તારીખ 22/2/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 128 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 471
ખંભાત કે મુમુક્ષુ ભાઈઓ શ્રી અંબાલાલ ભાઈ વગેરે છે ઉનકે પર લિખા હુઆ પત્ર હૈ पत्र का विषय है कि जिसको परिभ्रमण की चिंतना होती है उसको नियम से किस प्रकार के वैराग्य की प्राप्ति होती है। परिभ्रमण की चिंतना हो और वैराग्य की प्राप्ति न हो ऐसे नहीं बनता, वो ऐसा स्वयं सहज ही बनता है। और जिसको परिभ्रमण की चिंता लगे और उदय भाव में निरसता आई, उदासीनता आई, उसको पूर्णता का लक्ष्य होता है, तो पूर्णता के लक्ष्य होने के काल में किस प्रकार के परिणाम होते हैं इनका एक तादृश्य चितार अपने अनुभव से कृपालु देव ने यहाँ लिखा है। और जिसको पूर्णता का लक्ष्य होता है उनको सत्पुरुष के पहचान करने की योग्यता हो सकती है, उसको आत्मस्वरूप के पहचान करने की योग्यता आगे जा कर के हो सकती है और उसको स्वानुभव होकर के निर्वाण पद की, मैंने पूर्णता जिस पद की लक्ष्य बांधा है, जिस पद का ध्येय रखा है, वहाँ तक पहुँचने की परिस्थिति बन जाती है। तो ये जो निर्वाण पद हैं इनका फाउंडेशन कैसा होता है यही इस पत्र का विषय है। इसलिए मुमुक्षु को ये प्रयोजनभूत है, अत्यंत प्रयोजनभूत है। धर्मेच्छक भाइयों, प्रथम संवत्सरी और इस दिवस पर्यंत संबंध में किसी भी प्रकार से तुम्हारा अविनय, असातना, असमाधि, मेरे मन वचन काया के कोई भी युगाद उसके लिए पुनः पुनः मैं क्षमा मांगता हूँ। पत्र लिखा है प्रथम भादरवा सुद छठ, तो संवत्सरी आई है और उस संवत्सरी के निमित्त से वो जो अपने परिचित लोग थे उनके पर क्षमा अपना के पत्र लिखते थे। इस प्रकार का व्यवहार जैन दर्शन में बहुत पुराना है और इस प्रकार का व्यवहार अन्य धर्म के संप्रदाय में देखा नहीं जाता। साल में एक दिन, पूरे साल में कुछ भी जाने में अनजाने में किए हुए अपराध की क्षमा मांग लेना, अगर हृदय से वो क्षमा कोई मांगता है तो ये बहुत हल्का हो जाता है। यानी वैमनस्य वृत्ति का जो शल्य है उस शल्य को निर्मूल करने का एक यह संवत्सरी दिन का पर्व होता है। मनुष्य स्वभाव में संसार में राग द्वेष होना बहुत स्वाभाविक है। अनेक अनेक जीवों के साथ जो भी व्यवहार होता है उस व्यवहार से किसी को दुख भी पहुंचता है, नहीं पहुंचाना चाहते हो तो भी पहुंचता है। और यही कारण से एक ये व्यवहार की संकल्पना है जैन दर्शन में, जैन संप्रदाय में, कि वो क्षमा की याचना करके खुद हल्का सा हो जाता है। कृपालु देव को मुमुक्षु के प्रति भी ऐसी क्षमा याचना का पत्र लिखते थे और इस ग्रंथ में ऐसे अनेक पत्र पाए जाते हैं। अब पत्र का विषय शुरू करते हैं। अंतर ज्ञान से स्मरण करते हुए ऐसा कोई काल जानने में नहीं आता या स्मरण में नहीं आता कि जिस काल में, जिस समय में इस जीव ने परिभ्रमण नहीं किया हो, संकल्प विकल्प का रटन नहीं किया हो और इसके द्वारा समाधि को न भुला हो। क्या कहते हैं? अंतर्ज्ञान से स्मरण करते हुए, उसमें मर्म है कि ये जो परिभ्रमण की चिंतना है वो ऊपर ऊपर से नहीं होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि परिभ्रमण के विचार तो हमको भी आते हैं कि ये परिभ्रमण चलता है, नहीं चलना चाहिए, इसके लिए क्या करें, लेकिन इससे इसमें कोई ज़्यादा चलता नहीं आगे, थोड़ा बहुत विचार आ जाता है और फिर उदय में इतने जुड़ जाते हैं, इतने तन्मय हो जाते हैं कि वो बात, वो विचार शायद आया ही न हो। तो एक शब्द रखा है अंतर्ज्ञान से स्मरण करते, क्योंकि भूतकाल का विषय है, स्मरण करने का विषय है, लेकिन ऊपर ऊपर से नहीं, बहुत अंदर से, वेदना से। अपन गुजराती में कहते हैं आतरड़ी माथी उठे, आतरड़ी ककड़ी ने अंदर से आए। कैसा कोई समय जानने में नहीं आता, स्मरण में भी नहीं आता कि जिस काल में, जिस समय में इस जीव ने परिभ्रमण नहीं किया हो, वो परिभ्रमण करता ही रहा है, परिभ्रमण करता करता अब इस भाव में यहाँ आया है, और उनको संकल्प विकल्प का भी रटन, अन्य पदार्थ के प्रति चिंता का संकल्प विकल्प, ये भी हमेशा हमेशा चालू रहा है, और इस कारण से यह जीव अपनी आत्म शांति को खो बैठा है। समाधि में क्या होता है? जहाँ आदि व्याधि उपाधि का कोई दुख न हो उसको कहते हैं समाधि। तीनों में आदि सामान्य शब्द है, आदि व्याधि उपाधि और समाधि। आदि व्याधि उपाधि में अनेक प्रकार के दुख हैं और समाधि ये तीनों से रहित ऐसी आत्म शांति है। फिर से अंतर्ज्ञान से स्मरण करते हुए, परिभ्रमण की चिंतना ऊपर ऊपर से होती है तो वो चिंतना वास्तव में चिंतना नहीं है, एक सामान्य विचार है जो बेकार जाता है, उसका कोई फल नहीं आता है। तो यहाँ अपने अनुभव से लिखते हैं कि जब हमको परिभ्रमण की चिंता हुई तो अंदर से आई थी, बहुत गहराई से आई थी, तो लगा के हमने बहुत परिभ्रमण किया है, बहुत परिभ्रमण किया है, अगर इसका यथार्थ इलाज प्राप्त नहीं किया तो न जाने अब कितने अनंत काल तक हमारा परिभ्रमण और परिभ्रमण में अनेक प्रकार के दुख भोगने में आएगा, भोगते रहेंगे, इसका कोई हिसाब लगा सकते नहीं है। और इस कारण से हमारी आत्म शांति कभी अनुभव में नहीं आई, यानी हम भूल गए कि हम अनंत शांति, अनंत शांति के पिंड ऐसा आत्मा है, वो बात हम भूल गए। और शांत परिणमन से हमारी शांति का अनुभव करते रहना, यही हमारा स्वभाव है, ऐसे स्वरूप को हम भूल गए। आदि व्याधि उपाधि में उतने लगे रहे कि हम समाधि को, आत्म शांति को भूले हुए हैं। निरंतर यह स्मरण रहा करता है। जब अंतर ज्ञान से, अंतर की वेदना से ये परिभ्रमण की चिंता उठती है तो उसका स्मरण निरंतर रहा करता है। ये चिंता की परिणति जाती नहीं। जैसे किसी का, स्वजन का घर में मृत्यु हो जाता है और 12वां 13वां के दिन मिठाई लड्डू खाते हैं, तो क्या उसका लड्डू खाते खाते दुख चला जाता है क्या? कोई आग्रह से भी उनको खिलाएगा, थोड़ा और खाओ और थोड़ा लीजिए, थोड़ा हंसना भी हो जाएगा, खाना भी हो जाएगा, लेकिन अंतर दुख की परिणति चली जाएगी नहीं, वो निरंतर चालू रहती है। ऐसे जिनको अंदर से परिभ्रमण की चिंता हुई, उनको उसकी परिणति बन जाती है, वो जाती नहीं है। तो लिखते हैं कि निरंतर यह स्मरण हमको रहा करता है, और यही लक्षण है कि ये चिंतना यथार्थ रूप से आई है। ये विस्मरण इसका नहीं कर सकते, यही इसका लक्षण है कि ये चिंतना यथार्थ रूप से आई है। वरना ऊपर ऊपर से विचार आ जाता है जो वृथा होकर के चला जाता है, इससे कोई वैराग्य उदासीनता आदि प्राप्त नहीं होती और आगे पूर्णता का लक्ष्य भी नहीं होता। निरंतर यह स्मरण मा रहा करती है और यह महावैराग्य को देती है। ये जो परिभ्रमण की चिंतना है वो महावैराग्य को, थोड़े वैराग्य को उत्पन्न नहीं करती। एक मृत्यु का भय भी आदमी का धंधा को छुड़ा देती है, संसार के महत्वपूर्ण सभी कार्य को छुड़ा देती है। तो हार्ट अटैक आता है ना, ICU में ले जाते हैं, हाँ, वो कितना स्ट्रिक होते हैं। किसी भी परिवार के एक सदस्य को भी अंदर जाने नहीं देते, और जिस कारण से उनको फीलिंग आ जाए, रोने लग जाए या कुछ भी, उनको इमोशनल स्ट्रेस हो जाए, क्या कहते हैं उसको, ये मेडिकल साइंस में उसको इमोशनल स्ट्रेस कहते हैं, ऐसी फीलिंग पोजीशन में उसको आने नहीं देना वरना हार्ट फेल हो जाएगा। तो कितनी गंभीर बात है कि उनको एक कमरे में, बंद कमरे में रखा जाता है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, जितनी भी आवश्यकता लगे। कितनी चिंतना होती है कि संसार के महत्वपूर्ण सभी कार्य को छोड़ करके वहां एंटर होना पड़ता है। आज हमारे बहुत महत्व का काम है, वो बात छोड़ देनी पड़ती है। एक मरण से बचने के लिए एक बात छोड़नी पड़ती है, तो अनंत जन्म मरण से बचने के लिए कितनी टॉप प्रायोरिटी आनी चाहिए, इसका हिसाब किताब लगा देना कि अनंत गुण आनी चाहिए। लेकिन इतनी भी नहीं आती है तो हमारा संसार के प्रति के आसक्ति का, लाभ नुकसान की चिंता का हमारा जोर इतना है कि हम इतनी बड़ी बात को भी ओवरटेक करके, उल्लंघन करके हम हमारे उदय के कार्य में लगे हुए रहते हैं। बहुत सुंदर पत्र है ये। मुमुक्षु को प्रारंभ में परिभ्रमण की चिंता किस प्रकार से होती है, कैसी होती है तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। इसके बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं आती। इतनी उदासीनता ये बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं है, ऐसे जीव आत्मकल्याण करने के लिए प्रमाणिक नहीं होते तो काम नहीं होता है, वो स्वाभाविक है। और स्मरण होता है, इस विषय में कैसा कैसा स्मरण होता है। और स्मरण होता है कि यह परिभ्रमण केवल स्वच्छंद से करते हुए इस जीव ने, इस जीव को उदासीनता क्यों न आई, परिभ्रमण क्यों किया, स्वच्छंद से किया। स्वच्छंद दो प्रकार के हैं, एक तो तीव्र कषाय को भी स्वच्छंद कहते हैं, बहुत रस से कषाय के परिणाम होने, कंट्रोल बाहर जा करके, उसको कहते हैं स्वच्छंद, के जिसको रोकने के लिए कोई कंट्रोलिंग वाल नहीं होता है। दूसरा, जो कषाय तो तीव्र नहीं करते, कषाय तो मंद रहता है क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान में लगे हुए रहते हैं, धार्मिक साधन करते रहते हैं, लेकिन ज्ञानी की आज्ञा से नहीं चलते हैं, अपनी मनमानी करके अपना साधन, धर्म साधन करते हैं, ये भी स्वच्छंद है। तो कहते हैं कि हमको ये और भी स्मरण आता है कि अनंत काल का परिभ्रमण केवल स्वच्छंद से किया। क्यों किया परिभ्रमण? केवल स्वच्छंद से परिभ्रमण किया, और ऐसा स्वच्छंद करते हुए इस जीव को उदासीनता क्यों नहीं आई, अफसोस करते हैं, खेद करते हैं। दूसरे जीवों के पर प्रति क्रोध करते, मान करते हुए, माया करते हुए, लोभ करते हुए, या किसी भी प्रकार का अन्यथा मैंने अनुचित करते हुए, यह बुरा है, नुकसान करने वाला है, ऐसा यथा योग्य क्यों नहीं जाना। इस स्वच्छंद में क्या होता है, तीव्र कषाय होता है तो चारों कषाय लिया, कभी क्रोध किया, कभी मान किया, कभी माया की, कभी लोभ किया, और अनेक प्रकार के दूसरे अनुचित परिणाम करते हुए, ये परिणाम बहुत नुकसान करेगा, ऐसा क्यों नहीं जाना, उतना ही नहीं लिखा, ऐसा यथा योग्य क्यों नहीं जाना। यथा योग्य जाना और जाना, तो जानने तो ऊपर ऊपर से आता है कि ये तो नुकसान करने वाले परिणाम है, लेकिन जो यथार्थ रूप से जानते हैं उनका रस टूटे बिना रहता नहीं। धर्म के क्षेत्र में तो सब बातें जानने को मिलती है कि ये कषाय के परिणाम तो अच्छे नहीं होते, लेकिन ये जानने जानने में भी दो प्रकार है। एक सामान्य रूप से जानने में आता है और इसका फल कुछ नहीं आता है, तो वो जानना यथार्थ नहीं है। और जिसके जानने से यथार्थ उदासीनता आई, वो भी यथार्थ उदासीनता आई, तो ये जानना सफल है, वो यथा योग्य जाना है। उदासीनता भी दो प्रकार की होती है, यथार्थ भी होती है और यह अयथार्थ भी होती है। तो जो अयथार्थ उदासीनता होती है उसका अवलंबन आत्मकल्याण को छोड़ करके कुछ दूसरा होता है। अन्य मत में भी वैराग्य उदासीनता उन लोग को आती है, कहीं धार्मिक जनों को, वो भी अपने अपने उदासीनता के कारण के अपने धर्म की रूढ़ि अनुसार वो भी त्याग वैराग्य आदि करते हैं, कोई जंगल में भी चले जाते हैं, बाबा साधु हो जाते हैं, लेकिन वो उदासीनता यथार्थ नहीं है। यहां तो मुमुक्षु के एकदम प्रारंभ की भूमिका का ये विषय चलता है, उसमें परिभ्रमण की चिंतना के कारण से वर्तमान चलते हुए उदय भाव में एकदम निरस्त आ जाना, उसी को यथार्थ उदासीनता कहते हैं। खाने में पीने में अनेक प्रकार की जो जीवन की प्रवृत्ति है उसमें निरस हो जाना, वो यथार्थ उदासीनता है। तो वो परिणाम अच्छे नहीं थे ऐसे यथार्थ योग्य क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना इतना नहीं लिखा, यथा योग्य क्यों नहीं जाना, यथार्थ रूप से क्यों नहीं जाना, अर्थात ऐसा जानना चाहिए था फिर भी नहीं जाना, ऐसा जानना आवश्यक था, जरूरी था, फिर भी हमने उस वक्त भूतकाल में कभी नहीं जाना है, यथार्थ रूप से कभी नहीं जाना है, ऐसी बड़ी गलती की है, यह भी बार बार परिभ्रमण करने का वैराग्य देता है। ऐसा विचार ऐसी चिंतना से लगता है कि हमारी गलती से परिभ्रमण होता है, परिभ्रमण करेंगे अगर सही नहीं समझे तो परिभ्रमण करेंगे, वो सोचते हुए और वैराग्य आता है। ऐसे वैराग्य की डिग्री बढ़ती जाती है। ये जो परिभ्रमण की चिंतना जिसको बराबर यथार्थ रूप से गले लगती है उनकी वैराग्य की दशा बढ़ जाती है। परिभ्रमण की चिंतना का ये स्वरूप है और कृपालु देव ने यह बात अपने अनुभव से लिखी है कि ऐसा होता है। ये बहुत प्रारंभ की भूमिका है, एकदम पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत हुए उसके पहले की ये भूमिका है। अगर इसके पहले वाली भूमिका में भी हम नहीं आए तो हमारा अभी तक का किया हुआ जो भी धर्म साधन हो, हमने शास्त्र भी पढ़े, पूजा भक्ति किए, दयादान यात्रा आदि किए, जो भी किया, और कभी कभी उपवास आदि व्रत आदि भी किए, क्या हुआ, अंत कियो तदपि कछु हाथ हजू न पड़ो, कुछ हाथ में नहीं आएगा। और स्मरण होता है कि जिसके बिना एक क्षण भी एक पल भी मैं जिंदा नहीं रह सकता, ऐसे कितने पदार्थ स्त्रियादिक या स्त्री को पति पुरुषादिक यह अनंत बार छोड़ते हुए इसके वियोग होना हुआ अनंत काल भी हो गया, तथापि इसके बिना जिंदा रहे ये कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं है, थोड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। एक दफे तो ऐसा परिणाम आ गया कि हम एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, अगर दो में से एक का मृत्यु हो जाएगा तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे, हम तो मर जाएंगे, ऐसा अनंत बार हुआ, एक बार ऐसा नहीं हुआ है और हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं, तो अनंत काल हो गया ऐसा फिर भी हम जिंदा रहे हैं, ये कोई थोड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। अर्थात जिस जिस समय में ऐसा तीव्र प्रतिभाव किया, जिस जिस समय में ऐसा प्रतिभाव किया था उस वक्त यह बिल्कुल कल्पित था, उसमें कोई वास्तविकता नहीं थी कि हम मर जाएंगे इसके बिना, यह कोई वास्तविकता नहीं थी, कोई कल्पित परिणाम था, कल्पना हुई थी और आज इसकी कोई असर नहीं है, कल्पना थी इसका कारण क्या कि आज इसकी कोई असर हमारे पे नहीं है, ऐसे अनंत प्रसंग हमने छोड़ा है भूतकाल में, यह बात कल्पित थी, ऐसा प्रतीत भाव क्यों हुआ, ऐसा कल्पित प्रतिभाव क्यों हुआ, यह बार बार वैराग्य को देता है। इस प्रकार के तीव्र अनुराग के जो परिणाम हैं, वो हमारे जीव ने अनंत बार किया, वो कल्पित भाव किया ऐसा ऐसा सोचते हुए, और वैराग्य आता है कि अब क्या ऐसा करना है। वर्तमान जीवन में ऐसा हमको करना नहीं है किसी के प्रति कि तीव्र प्रीति हो जाए कि जिससे इसका वियोग में बहुत दुख हो जाए, ऐसा प्रतिभाव कल्पित प्रतिभाव अब नहीं करेंगे। भूतकाल में बहुत ऐसा कल्पित परिणाम किए, मिथ्या कल्पना किया, अभी ऐसी कल्पना हम करने वाले नहीं है, ऐसा वैराग्य आता है। और ये लिया राग का विषय, अब कहते हैं कि द्वेष कैसा किया है। और जिसका मुंह किसी भी काल में मुझे नहीं देखना है, कितना द्वेष आता है कि इसका मुंह नहीं देखना है, अगर सामने आ जाएगा तो मैं मुंह फिरा लूंगा, सामने नहीं देखूंगा, आंख उठा के नहीं देखूंगा। और जिसका मुंह किसी भी काल में नहीं देखूंगा, जिसको किसी भी काल में मैं स्वीकार नहीं करूंगा, एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ग्रहण नहीं करूंगा, उसके घर में पुत्रपने से, स्त्रीपने से, दासपने से, दासीपने से, छोटे जंतुपने से क्यों जन्म लिया, उसी के घर में आया। जिसके प्रति बहुत द्वेष था और कर्म बंधन ऐसा हुआ कि उनके में ही जन्म लिया, वो ऐसा द्वेष क्यों आता है कि संसार में जब राग का पोषण नहीं होता तो वितरागता नहीं आती संसारी जीव को, राग का स्थान द्वेष ले लेता है। क्या जितना राग तीव्र उतना देश भी द्वेष भी तीव्र हो जाएगा। ये मोह राजा के दोनों पुत्र है, जुड़वा भाई है, या एक सिक्के की दो बाजू है, जहां राग है वहां द्वेष है और है ही। राग का पोषण नहीं हुआ, द्वेष जोर से आएगा, जितना तीव्र राग था उतना जोर से द्वेष करेगा कि अभी किसके अभी इसका मुंह नहीं देखना है, अपने यहां होता है ना, इसका घर का पानी नहीं पिएंगे, इसके सामने नहीं देखेंगे, कोई किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखेंगे, सब संबंध पूरा कर देंगे, और वो राग द्वेष के वसात ऐसा आयु बन जाता है कि उनके घर वो जन्म लेता है। कभी पत्नी रूपे, कभी नौकर रूपे रूप से, और कभी कोई छोटे मोटे जंतु रूप से, यहाँ चूहा होता है, मक्खी होता है, ये छिपकली डेड ग्रोड़ी अपने के छिपकली होता है, या मक्खी मच्छर भी होता है, कुछ न कुछ रूप से इसके घर में वो रहता है। उतना देश होने पर भी उसको वहीं कुदरत धकेलती है। अर्थात ऐसे द्वेष से ऐसे रूप में जन्मना पड़ा, उसको इसका संयोग नहीं चाहिए था, फिर भी उसको आना पड़ा, कुदरत ने ऐसी व्यवस्था की कि देख तेरा द्वेष का फल तुमको मिलता है। और ऐसे करने की तो इच्छा नहीं थी, बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि हम इनके घर जाएं। कहो यह स्मरण होने पर यह क्लेशित आत्मा के प्रति जुगुप्सा नहीं आती होगी, अर्थात आती है, अपने आत्मा पर अपने को घृणा आती है, ये भी एक वैराग्य का कारण है कि इस प्रकार के परिणाम भी हमने बहुत किए और इसका फल भोग रहे हैं। ऐसे अनेक प्रकार से जब जीव को परिभ्रमण की चिंता होती है, तो वैराग्य वृद्धि हुए, उदासीनता वर्धमान हुए, ऐसे इनकी विचारधारा चलती रहती है अनेक प्रकार से। जो भी संसार के पदार्थ देखते हैं, सामान्य प्रसंग भी उनको होता है तो वैराग्य में आ जाता है। सामान्य प्रसंग है ये, भावना बोध में लिया है, भावना बोध है ना, उसमें वो बात लिया है। पहली पंक्ति है, पेज नंबर है 32, भावना बोध का उपोद्घात की पहली पंक्ति। चाहे जैसे तुच्छ विषय में प्रवेश करने पर उज्ज्वल आत्माओं का स्वतः वेग वैराग्य में झंपलाना, यह है वैराग्य में कूदना, जोर से वैराग्य में आ जाना, उसको गुजराती में कहते हैं झंपला, वो जोर से कूद, वो धीरे रहने नहीं। ये उज्ज्वल आत्मा का ऐसा ही होता है, तुच्छ विषय सामान्य प्रसंग में भी उनको वैराग्य ही वैराग्य रहता है। तो परिभ्रमण की चिंतना करने वाले को तो विशेष विशेष वैराग्य होता ही है। अब कहते हैं कि ऐसी चिंतना से जो उदासीनता प्राप्त हुई, तो अब परिभ्रमण नहीं करने के लिए कैसा दृढ़ निश्चय होता है, परिभ्रमण मिटाने के लिए कैसा मंथन चल करके दृढ़ निश्चय होता है। वो तो परिभ्रमण को मिटाने का निर्धार कहो या दृढ़ मोक्षेच्छा कहो, एक ही बात है। परिभ्रमण का नाश करना वो नेगेटिव बात है, और अपना परिपूर्ण आत्मशुद्धि करके कल्याण कर लेना ये इसका पॉजिटिव विषय है। बात दोनों एक ही है। तो परिभ्रमण की चिंतना से जो वैराग्य संपन्न हुआ, उनको परिभ्रमण का नाश का बहुत जोर से, यानी परिपूर्ण आत्मकल्याण का बहुत जोर से निर्धार होता है, दृढ़ निश्चय होता है। तो उसमें जोर कितना होता है, दृढ़ता कितनी होती है, इसका बहुत सुंदर चित्र इधर है, और लगता है कि कृपालु देव ने अपने अनुभव की बात लिखी है। ज्यादा क्या कहना, जो जो पूर्व के भवांतर में भ्रांति प्रमेय भ्रांतिपने से परिभ्रमण किया। परिभ्रमण किया क्यों, हमारी भ्रांति थी इसलिए हमने परिभ्रमण किया, कल्पना कर करके। राग द्वेष क्यों किया, मेरा तेरा क्यों किया, सिर्फ कल्पना करके, भ्रांति करके। इस संसार में कोई किसी का है नहीं, चाहे कितना भी राग करे, प्रीति करे, चाहे कितना द्वेष करे, कोई लेना देना किसी से है ही नहीं, ये वस्तु का स्वरूप है। फिर भी भ्रांति से कल्पना कर करके जीव अपना परिभ्रमण को बढ़ाता रहता है। अधिक क्या कहना, जो जो पूर्व के भवांतर से भ्रांतिपने से परिभ्रमण किया, इसका स्मरण करते हुए अब कैसे जीना, ये चिंतना हो गई है। अब वर्तमान में कैसा परिणमन करना कि जिससे परिभ्रमण हमारा नहीं हो, ये हमारी फिलहाल चिंता है कि हमको कैसा परिभ्रमण करना चाहिए, कैसा प्रवर्तन करना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए जिससे हमारा परिभ्रमण न हो। ऐसी हमको बहुत गहरी चिंता उत्पन्न हुई है, और ये चिंता जीव को वर्तमान जीवन की चिंता को तोड़ देती है। ऐसी चिंता ये होती है कि वर्तमान में जिस चिंता से के कारण से हमको आत्मकल्याण के लिए समय नहीं मिलता, वो बात छूट जाती है। कैसे जीना यह चिंतना हो गई है, आ पड़ी है। अब कैसी दृढ़ मोक्ष इच्छा होती है, फिर से नहीं जन्मना, जन्म लेना ही नहीं है, एक भी भव नहीं करना है, जोर आता है अभी, फिर से नहीं जन्मना और फिर से ऐसा नहीं करना, जन्म लेना पड़े ऐसा करना ही नहीं फिर से हमको, ऐसा दृढ़त्व आत्मा में से प्रकाशित होता है। आत्मा के गहराई में से ये उत्पन्न होता है, ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है, दृढ़ परिणाम उत्पन्न होता है कि अब मुझे जन्म मरण करना नहीं है, बिल्कुल जन्म मरण नहीं करना है, ऐसा ऐसी दृढ़ता आती है। और कृपालु देव को उतनी दृढ़ता आई थी कि वो आगम के इस वचन को भी गौण कर देते थे कि पंचम काल में यहां से मोक्ष नहीं होता। क्यों नहीं होता है, हम इसी भाव में मोक्ष में जाएंगे, हमारे अंदर से इतना जोर आता है कि हमको पूर्ण शुद्धि इस भाव में कर लेनी ही है, हमें फिर से जन्म मरण हमको करना ही नहीं, एक भी नहीं करना है। जबकि उन्होंने आगम पढ़े थे और जिनागम में वो बात भी पड़ी थी कि इस क्षेत्र में जन्म लेने वाला इस क्षेत्र से निर्वाण पद को सिद्धालय को प्राप्त नहीं होता है, उनको केवल ज्ञान भी नहीं होता और उस सिद्धालय में भी नहीं जाता, तो उनको ऐसे ऐसे भाव होता था। तो इस क्षेत्र से नहीं जाया जाता ने, हम लब्धि से दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे, महाविद्या आदि बहुत क्षेत्र है बड़ा, और वहां से चले जाएंगे, लेकिन हम तो निर्वाण लेने वाले हैं, हम अब छोड़ने वाले नहीं, बहुत किया, बहुत परिभ्रमण हो गया, हद हो गई, अब तो अब हमको भटकना नहीं है, इतना जोर से आया, उतना जोर से आया, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी थी तो एक भव बाकी रह गया, हरि ने देश जासुन स्वरूप स्वदेश। तो जो एकदम तीव्र पुरुषार्थ में आते हैं तो उनको संसार का ज्यादा समय बाकी रहता नहीं है, तो एक भव तो अनंत काल में कुछ नहीं है, कुछ गिनती में ही नहीं है, और 34 साल कुछ नहीं है, वर्तमान भव का 34 साल का क्या जीवन है, अभी तो जवान बोला जाता है, 34 साल का कोई आदमी को क्या बोलेगा, ये तो युवान है ऐसा कहेंगे, छूट गया ये भव, छूट गया चले जाएंगे मोक्ष में। फिर से नहीं जन्म लेना और जन्म लेना पड़े ऐसा फिर से करना ही नहीं, ऐसे परिणाम हमको करना ही नहीं कि फिर से हमको जन्म लेना पड़े, ऐसा दृढ़त्व हमारे आत्मा में प्रकाशित होता है, उत्पन्न होता है, उदय को प्राप्त होता है, इतना दृढ़त्व आ गया। परंतु कितनी निरुपायता है, वहां क्या करना, पूर्व कर्म के उदय आ पड़े हैं, उसमें उस उदय के साथ जुड़ना पड़ता है, इसके लिए क्या करें। जैसे कि वो 23 साल की उम्र में ये चिट्ठी लिखा है, बाद में सम्यक दर्शन हुआ है और ये चिंतना के बाद में ही सुभाग भाई की भेंट हुई है, सुभाग भाई मिले तो प्रथम भादरवावत 13 में पहला पत्र लिखा है, सबसे पहला 132 नंबर का पत्र, इसके पहले कोई सुभाग भाई के ऊपर का पत्र नहीं मिलता। तो वो प्रथम भादरवा मास में ही दोनों का मिलन हुआ है और बाद में वो उन दोनों के वियोग में पत्र व्यवहार चालू हुआ है, तो ये सूद में लिखा हुआ पत्र है, ये वद में लिखा हुआ है, तो मिले हैं, लिखा है इसके पहले तो मिले हैं। तो यहाँ जो उनकी जो वर्तमान दशा है वो समझ में आती है कि कैसी दशा थी, वैराग्य की दशा कैसी थी, परिभ्रमण की चिंतना की दशा कैसी थी और दृढ़ मोक्षेच्छा कैसी थी, पूर्णता का लक्ष्य कैसे बांधा था, ये बात यहाँ से मिलती है। परंतु कितनी निरुपायता है वहाँ क्या करना, यानी हम सभी प्रकार के उदय में तोड़ फोड़ करके जंगल में चले जाएं, किसी के साथ राग द्वेष मोह का परिणाम करने का प्रसंग ही नहीं रहे, ऐसा अगर हम करना चाहे तो भी कहाँ से करेंगे। कुछ हमारी भी निरुपायता है कि हमको अमुक प्रकार की परिस्थिति में रहना पड़ रहा है। परंतु फिर भी जो दृढ़ता है उसे पूर्ण करना ही है, हमारी दृढ़ता को छोड़ना नहीं है, भले ही परिस्थिति कुछ भी हो दृढ़ता को पूर्ण करेंगे, अवश्य पूर्ण करने, जो दृढ़ता है उसको पूर्ण करने, अवश्य पूर्ण पढ़ने, यही रटन है। पर हमारी दृढ़ता पूर्ण होनी ही चाहिए, ये हमारा रटन है। वो बात चालू रहती है, दृढ़ता में शिथिलता नहीं आती, परिस्थिति को देख करके हमारे परिणाम शिथिल नहीं होते। मुमुक्षु जीव की योग्यता का ये एक अच्छा लक्षण है कि परिस्थिति अपनी साधना से प्रतिकूल होती है तो भी अपना अपनी दृढ़ता में कमजोरी नहीं आती। जिसको कमजोरी आती है वो तो वास्तव में यथार्थ मुमुक्षु नहीं है, यहाँ से निकलता है। संसार में मुमुक्षु को अनेक प्रकार के प्रसंग होते हैं और उस प्रसंग को में उसके परिणाम जो है वो कैसे रहना चाहिए, कि चाहे जैसे प्रसंग हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसको अत्यंत गौण करके हमको आत्मकार्य करना है। इसने जो दृढ़ता है उसमें कोई फेरफार दृढ़ता में नहीं हो, दृढ़ता उतनी की उतनी बनी रहे, क्या बढ़ती रहे, कम तो नहीं हो परंतु बढ़ती रहे, ये यथार्थ मुमुक्षुता का लक्षण है, स्वरूप है, यही रटन है। परंतु जो कुछ आड़ा आता है उसको एक और करना पड़ता है, अर्थात खिसकाना पड़ता है और उसमें काल समय जाता है, जीवन चला जाता है, ऐसा न होने देना। जहाँ तक यथायोग्य विजय न हो वहाँ तक ऐसी दृढ़ता है, इसके लिए क्या करना। देखो क्या मंथन चलता है कि अनेक प्रकार की जो पूर्व कर्म की प्रारब्ध आधीन परिस्थिति थी उस परिस्थिति में से मार्ग निकालना है। जैसे हम कार लेकर के बाहर जाते हैं और रास्ता पे कोई पेड़ गिर गया तो हमको रुकना पड़ेगा, तो क्या करें, पेड़ रास्ते में गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, क्या हम वापस चले जाएं? अगर हमको जाना ही है तो हम कैसे आगे बढ़े, उसको खिसकाएं, जो भी रास्ते में मिलेगा भाई मदद करो, उसको एक और कर दो, खिसका दो तो जाने का रास्ता हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे कमजोर नहीं हैं कि रास्ता बंद हो गया है चलो वापस चले जाएं, ऐसा होना चाहिए नहीं। तो वो भी लिखते हैं कि हमारे जो भी संसार के संग प्रसंग है वो तो हमको आत्मकल्याण करने में आड़ा आता है और उसको एक और करना पड़ता है, कोरे करूँ एटले एक बाजू करूँ, उसको एक बाजू खिसकाना पड़ता है। और उसमें समय व्यतीत होता है, ऐसा एडजस्टमेंट करने में समय निकल जाता है। और समय निकल जाता है तो क्या लगता है, बहुत फील होता है, वेदना आती है, अरे मेरा जीवन चला जाता है, मेरा मूल्यवान जीवन चला जाता है, ऐसा अंदर से आता है। और ऐसा जीवन नहीं जाना देना चाहिए, ऐसा समय हमारा बहुत कीमती है, उस समय को हमें गंवाना चाहिए नहीं। कहाँ तक ऐसा होना चाहिए, जहाँ तक हम हमारे प्रयत्न में सक्सेस, विजय नहीं हुए मैंने, सक्सेस सफल नहीं हुए, वहाँ तक इस प्रकार का हमारा जोर, हमारी दृढ़ता, हमारा प्रयत्न चालू रहना चाहिए। ऐसी हमको दृढ़ता है तो इस दृढ़ता के कारण से क्या करना चाहिए, कितना मंथन किया है, ये बात थोड़ी और गहराई से विचार करने योग्य है। कि कोई भी परिस्थिति आड़ी आती है उसको ठीक करने में समय भी लग जाता है, यथार्थ मुमुक्षु को उसकी वेदना हो जाती है, लेकिन दृढ़ता कम नहीं होती है। क्या हमारी दृढ़ता में हमें एडजस्टमेंट नहीं करना है, हमारी दृढ़ता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे, हमारे बाहर की परिस्थिति में थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे परिणाम के साथ एडजस्टमेंट किसी का नहीं होता। क्या निकलता है इसमें से, क्या निकलता है, मुमुक्षु जीव को अपने आत्मकल्याण के मार्ग में आगे बढ़ने में अनेक प्रकार की विटंबनाएं खड़ी हो सकती है, उसमें हमारे परिणाम की कमजोर परिस्थिति हो जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं, हमारे परिणाम की स्थिति और मजबूत हो जानी चाहिए। चाहे हम बाहर में एडजस्टमेंट करें या नहीं करें, कुछ भी हो, कभी नहीं भी करें, पर कभी करना पड़े, करें नहीं लेकिन करना पड़े, करना पड़े और करना नहीं पड़े, उसमें क्या होता है कि छोटी बात के लिए हम कोई बड़ा झमेला खड़ा हो जाए ऐसा नहीं करेंगे, और कोई हमारे आत्मकल्याण में रुकावट आ जाए ऐसी कोई परिस्थिति यानी बलात्कार हमारे पर होता हो तो ऐसी बड़ी बात के साथ हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, हम वहाँ कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं, वहाँ हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। जहाँ हमको मार्ग से हटना पड़े वहाँ हमको कोई एडजस्टमेंट, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। छोटी मोटी बात हो, हमारे परिणाम में हम आगे बढ़ते रहते हैं तो लेट गो कर सकते हैं, लेकिन हमारा परिणाम में आगे बढ़ना और हमारी दृढ़ता, उसमें तो कोई कमजोरी आना चाहिए नहीं, ऐसा सिद्धांत यहाँ से निकलता है, ये वचन में से ऐसे सिद्धांत निकलता है। ये कर्म का उदय के पास कमजोर हो जाता है, मैं क्या करूं, ये बात उनको पूर्णता का लक्ष्य होने वाला नहीं है। ये तो पूर्णता का लक्ष्य किसको होता है, इसके परिणाम कैसे होते हैं, इसका मंथन कैसा होता है, ये कृपालु देव अपने अनुभव से लिखते हैं, बहुत अच्छी बात लिखे हैं। तो जहां तक सफलता नहीं मिले वहां तक बाहर की परिस्थिति में आड़े आने वाले परिस्थिति को ठीक करने में समय जाता है, वो जीवन चला जाता है, हमको हमारा जीवन का भोग देना पड़ता है, ऐसा लगता है इसका क्या करना है, और मंथन करते हैं कि इसका क्या करना, फिर कदापि किसी भी प्रकार से इनमें से कुछ कर ले तो ऐसा स्थान कहाँ है कि जहाँ जाकर के रह जाएं। मानो कि ऐसा विचार आए कि छोड़ दो पूरे परिवार को, घर को छोड़ दो, व्यवसाय को भी छोड़ दो, 23 साल की उम्र है, दो तीन साल से व्यवसाय में आए हैं, तो कुछ कर ले हम ऐसे जोर से, तो फिर हम हमारे लिए कोई ऐसा स्थान नहीं दिखता कि जहाँ जा करके हम रहें, योग्य स्थान ऐसा नहीं दिखता। संप्रदाय में साधु थे, तीनों जैन संप्रदाय के साधुगण थे, उनको एक स्थान भी नहीं दिखा है कि किसी को गुरु धारण करके इसके चरण में बैठ जाए, किसी को ज्ञानी के रूप में नहीं देखे। लिखते हैं कि कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है कि जा करके हम कुछ करके, मैंने त्याग करके सबको छोड़ करके वहाँ जगह जा करके रहे, ऐसा कोई स्थान कहाँ है, ऐसा कोई स्थान तो दिखने में नहीं आ रहा। अर्थात ऐसे संत कहाँ है, ऐसे गुरु कहाँ है जहाँ जाकर के इस दशा में, यह दशा में बैठ करके हमारी जो दशा मंथन की चल रही है, वैराग्य की चल रही है, इसका पोषण प्राप्त हो, उसका पोषण मिले, इसकी पुष्टि हो जाए, ऐसे कोई संत दिखने में आते हैं नहीं है। तो फिर क्या करना, देखो कैसे कैसे मंथन चला है, तो फिर क्या करना, क्या करना, क्या बहुत जोर आया है, इतना जोर आया है, उतना जोर आया है कि कुछ भी हो जाए हमको हमारा काम करना ही है, एट एनी कॉस्ट।